તારીખ 2/2/1989, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વચનામૃત, બોલ નંબર 91 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 79.
चीज है जिसको धर्म प्राप्त हुआ है वो धर्मात्मा कैसा होता है और धर्म कैसे प्राप्त करना, धर्म का प्राप्त करने की कार्य पद्धति क्या है, जो धर्म बतलाएंगे कि ये धर्म है वो कैसे संप्राप्त होता है, ये तीन बात यहाँ पर चर्चा करी है। धर्म शरीर वाणी पैसा आदि से होता नहीं, नास्ति से पहले लेते हैं। कोई शरीर की क्रिया से धर्म होवे, पूजा यात्रा व्रतशी ऐसी कोई शारीरिक प्रक्रिया से धर्म हुए ऐसा नहीं बनता। मुख से वाणी बोलते हैं, पूजा के भगवान की स्तुति, आत्मा के तत्व के विषय में जो भी वाणी है, शास्त्र की जो वाणी है, शास्त्र पढ़ते हैं लिखते हैं, ये कोई वाणी से धर्म नहीं। क्योंकि शरीर अजीव की पर्याय है, वाणी भी अजीव की पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं है। और पैसा से भी धर्म नहीं होता है। कोई दान देवे, कोई मंदिर बनावे, कोई साधर्म को वात्सल्य करे, चार प्रकार के दान होते हैं, जो पैसों के माध्यम से होता है वो भी अजीव की प्रक्रिया है, अजीव की क्रिया, जीव की क्रिया, इससे कोई धर्म नहीं होता। अगर पैसे से धर्म होता तो पैसे वालों को ज्यादा हो जाता, गरीब को नहीं होता। वाणी से धर्म होता तो कोई वक्ता होता, लेखक होता, उसको ज्यादा हो जाता, जिसको अनपढ़ है उसको नहीं होता, पढ़ा लिखा को ज्यादा होता। और शरीर से संयम और संयम शरीर से धर्म होता तो जो शरीर शक्ति वाला है, शरीर से बलवान है वो ज्यादा धर्म कर सके, और शरीर से कमजोर हो गए धर्म नहीं कर सके, उसको धर्म कम हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं होता क्योंकि ये सब आत्मा से भिन्न अचेतन अन्य द्रव्य है, पर द्रव्य मैंने अन्य द्रव्य है, भिन्न द्रव्य है, जीव से भिन्न अचेतन द्रव्य है, इससे धर्म कभी नहीं होता है। इसमें आत्मा का धर्म नहीं रहता है, शरीर में, वाणी में, पैसा में। आत्मा नहीं, आत्मा का कोई गुण नहीं, आत्मा के कोई पर्याय नहीं, आत्मा का कोई धर्म इसमें नहीं है। ये तो बात कही भिन्न अचेतन पदार्थ के। अब जीव के परिणाम की चर्चा करते हैं। ये मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य आदि पाप के परिणाम हैं। इतने जो प्रकार हैं, ऐसे भी बहुत से हैं, वो सब पाप के परिणाम हैं। और दया, दान, पूजा, भक्ति, ये प्रतिपक्ष है, पाप से हैं। दया, दान, पूजा, भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय ले लेना, इसमें शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इसमें पुण्य भाव से भी धर्म नहीं होता, पाप भाव से धर्म नहीं होता, ये तो सर्वसम्मत है ही। कोई झगड़ा है, तकरार है, तो इस विषय में है कि दया, दान, पूजा, भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, भगवान के नाम स्मरण, यात्रा आदि, इसमें भी धर्म नहीं होता है क्या? व्रत आदि का पालन करें, व्रत करें, संयम पालें, इसमें भी धर्म नहीं होगा क्या? कहते हैं कि इसमें जो कषाय, मंद कषाय के परिणाम हैं, प्रशस्त राग के जो परिणाम हैं, वो शुभ परिणाम है, पुण्य भाव रूप परिणाम है, वो धर्म के परिणाम नहीं है। जिसको जैन धर्म कहते हैं, ये कोई वीतरागी दशा है, ये कोई पुण्य पाप वाले परिणाम नहीं है। ऐसे तो अन्य मति भी करते हैं कि नहीं करते हैं, पुण्य के परिणाम अपने अपने मान्यता अनुसार तो अनिमति भी करते हैं, उनके फल भी भोगते हैं वो लोग प्रसिद्ध रूप से। उनके फल अनिमति में नहीं भोगने में आते, देखते भोगते नहीं, देखने में आते क्या? तो प्रसिद्ध रूप से देखने में आते हैं, किंतु इससे धर्म नहीं होता, क्योंकि वो दोनों विकारी भाव है। विकारी भाव धर्म नहीं, अविकारी, निर्विकारी शुद्ध दशा, आत्मा की निर्विकारी शुद्ध दशा, वही धर्म है, उसी को धर्म कहते हैं। पहली बात बताया, धर्म माने क्या? कि धर्म कोई अचेतन के पर्याय नहीं, शरीर, वाणी, पैसा के पर्याय नहीं, पाप का परिणाम नहीं, पुण्य के परिणाम नहीं, वो तो नास्ते से लिया मात्र। देव के प्रताप से समझी तो इस समझ को अपने परिणाम में लागू किया कि नहीं किया, यानी इस समझ को कार्यान्वित किया कि नहीं किया, इस समझ का कोई अमल किया कि नहीं किया, ये सवाल पैदा होता है। समझे, सुने, पढ़े, समझे, अच्छा लगे, क्योंकि बात तो तत्व की सुंदर है, तो अच्छी भी लगती है, नहीं लगती है उसकी चर्चा नहीं करनी है हमें, लेकिन जिसको अच्छी लगती है उसकी चर्चा करेंगे। तो अच्छी लगती है, ऐसा परिणाम अच्छा लगता है कि चलो हमें ये बात तो जची, इसलिए बार बार सुनते तो हैं। ऐसे वहां संतुष्ट हो जाने से ये बात हमें प्रिय है, ऐसे इस बात में संतुष्ट हो जाने से आत्मस्वरूप की रुचि और अनुभव, रुचि पुरुषार्थ और अनुभव प्रकट नहीं होता। ये गुरुदेव के प्रताप से समझें फिर भी कोई बाकी क्या चीज रही कि उसमें संतुष्ट नहीं हो करके हम इसका साक्षात अनुभव कैसे करें, ऐसी आवश्यकता दिखे, ऐसी जरूरत दिखे, इसकी रुचि होए, रुचि अनुसार पुरुषार्थ चले, तब आगे जाके काम होता है। जैन दर्शन का अध्यात्म विषयक एक महासिद्धांत है कि जीव को अपनी किसी भी पर्याय को मुख्यता नहीं देनी है। चूंकि सम्यक दृष्टि वो द्रव्य दृष्टि होने से सिर्फ अपने द्रव्य को ही दृष्टि से विषय करता है, और वो दृष्टि खुद पर्याय को भी नहीं देखती है, स्वीकार नहीं करती है, देखती नहीं है क्या, स्वीकार ही नहीं करती है, अपने स्वरूप रूप त्रिकाली शुद्ध परमात्मा निज का परम पारिणामिक भाव को ही अपना स्वरूप रूप स्वीकार करती है। ऐसी जो स्वद्रव्य की तीक्ष्ण दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, उसको ही स्वीकार करती है, इसलिए ज्ञान में इसकी ही मुख्यता रहती है। जिसको दृष्टि होती है उसको इसकी मुख्यता रहती है। यहाँ से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है आचार्यों ने कि किसी भी पर्याय को मुख्यता नहीं देनी है, पुण्य के परिणाम की तो नहीं, शरीर के परिणाम की तो नहीं, वाणी के परिणाम की तो नहीं, मन के परिणाम की तो नहीं, लेकिन जो अध्यात्म अवस्था हो, सम्यक दर्शन की हो, सम्यक ज्ञान की हो, सम्यक चारित्र की हो, सम्यक तप की हो, साधक सम्यक दृष्टि अपनी किसी भी पर्याय को प्रधानता नहीं देते। सुगानी जी ने पत्र में बहुत सुंदर लिखा, एक पंक्ति लिखी है कि मोक्षार्थी जीव, ऐसा शब्द प्रति मोक्षार्थी जीव क्षणिक अल्पकालीन भावों का मूल्य नहीं आंकते, इतना लिखा है। इसने अपने मूल अनंत गुण की खानी जो है, अनंत गुण का निधान है, इसका इतना मूल्य आंका है, फिर इसके आगे वो अपनी शुद्ध पर्याय का भी मूल्य नहीं आंकते, फिर विकारी रागादि पर्याय का, शुभ राग का, विकारी पर्याय का मूल्य आंकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। में जाने का होगा, पाप के परिणाम की तीव्रता रहे, पाप के परिणाम की अधिकता हो जाए, और यही रस चालू रह जाए, क्या फल है इसका? अधो सिवा अधोगति कोई बात नहीं है इसमें, यही बात है। पहली तो ये बात है कि जीव को इस दुख के परिणाम का ख्याल क्यों नहीं आता, इसमें तो दुख है, बहुत दुख है इसमें, पाप के परिणाम में तो तीव्र आकुलता है, तीव्र आकुलता में बहुत दुख होता है। तो आखिर में सब जीव चाहता है सुख शांति को, ये कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि कोई जीव सुख शांति को चाहता है या नहीं चाहता है, ये कोई सवाल करने का प्रश्न है। सभी का यही समस्या है, प्राणी मात्र की यही समस्या है कि हमें सुख चाहिए, और दुख के परिणाम में दुख क्यों नहीं लगता है, ये वास्तविकता का उल्लंघन क्यों होता है, खुद को अपने को टटोल करके ढंडोल करके इस बात को पूछे, अपने आपको यही पूछे कि ऐसा क्यों, कि वो मेंस के पूर्व भूमिका के जो पत्र आए हैं अभिनंदन ग्रंथ में, उसमें एक बहुत बहुत सुंदर बात है, से उनको ये दुख लगने लगा संसार में, दुखमय परिणाम में भी हर्ष की कल्पना करके जीव रास्ता है, लेकिन उनको तो मंद कषाय के परिणाम में भी दुख लगने लगा। धर्म के नजदीक जारी थी, निराकुल निर्विकार परिणाम प्राप्त करने के लिए एक लगन चालू हो गई, तो कषाय की मंदता वाले तत्व अभ्यास के परिणाम में भी आकुलता महसूस होने लगी। तो उस वक्त एक और प्रश्न खड़ा कर दिया अपने आप के विषय में कि ये दुख लग रहा है, इससे भी क्या, इससे क्या हो गया? जीव को दुख नहीं लगता है तो पहले ये कहते हैं कि दुख लगना चाहिए भाई, दुख के परिणाम में तो दुख लगना चाहिए। अब जिसको दुख लगा वो ऐसा सोचता है कि दुख लग गया तो क्या हो गया, मुझे इस परिणाम से भी संतोष नहीं है, और मार्मिक चीज आई है वो, इसे क्या हो गया, मुझे तो अभी ही अभी मेरा परमात्मा का वियोग है, इससे मुझे दुख हो रहा है, किंतु इस दुख से ये बात नहीं चलती, मुझे तो अभी ही मेरा निज परमात्मा की भेंट हो जानी चाहिए, उसकी भेंट नहीं हो ये बात मुझे एक समय के लिए भी मंजूर नहीं है। प्रयास का दुख लगता है, प्यास का दुख तो लगता है ना, नहीं लगता है ऐसे क्या बात है, ऐसा करते हैं, पानी ही पानी चाहिए, ऐसी बात है, ये वास्तविक चीज है। वास्तविकता क्या चीज है? बहुत गंभीर होकर के अपने आप के विषय में ये जो मनुष्य पर्याय का कितने समय बह रहा है, चला जा रहा है, इसके विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना है। कहीं भी हमारा समय गंवाना नहीं पड़े, और हमारी मुख्यता सदा ही हमारे मूल स्वरूप की रहे, किसी भी प्रकार की उदय का प्रसंग आ पड़े वो तो लाना नहीं पड़ता है, वो आ पड़ता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, लेकिन हर समय हर वक्त हमारा मूल स्वरूप की मुख्यता हमें बस मुख्यता ही रहा करे, ऐसा एक लक्ष्य हो जाना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं रहा तो जंजाल बहुत लंबी है, संसार की जंजाल बहुत लंबी है और जिंदगी बहुत थोड़ी है, इसके आगे जिंदगी बहुत थोड़ी है, किसी का काम कभी पूरा होता नहीं, किसी भी संसारी को पूछो आपका सब काम हो चुका कि नहीं भैया, बहुत काम बाकी है, हमारे तो बहुत काम बाकी है जी, तो वो बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि पाप के और पुण्य के जितने भी परिणाम हैं ये दोनों विकारी भाव हैं, और विकारी भाव कभी धर्म नहीं हो सकता। आत्मा की निर्विकार शुद्ध दशा वही धर्म है, ये अस्थि से यहाँ पर किया। आत्मा की शुद्ध निर्विकार दशा, पुण्य पाप रहित, कषाय रहित, मलिनता रहित, आकुलता रहित और विपर्यास रहित निर्विकार शुद्ध दशा है, यही धर्म है। इसका करने वाला आत्मा स्वयं ही है और और ऐसी धर्म दशा को करने वाला आत्मा स्वयं ही है। कोई अन्य पदार्थ अपनी धर्म की या अधर्म की दशा को नहीं करता, इसको करने वाला आत्मा स्वयं ही है, खुद ही है। यह धर्म ऐसा निर्विकार दशारूप धर्म, जिसको आगम की भाषा में, शास्त्र परिभाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आता है। अध्यात्म भाषा में उसको शुद्ध दशा कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, आत्माभिमुख दशा कहते हैं, स्वरूप के अभिमुख की दशा कहते हैं। जीव स्वयं ही करता है। यह धर्म वीतराग देव शास्त्र गुरु या जिन प्रतिमा आदि कहीं बार से आता नहीं, गुरुदेव की शैली है। साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा तीर्थंकर देव समोसरण में विराजमान हो, ये भी अपने धर्म के पर्याय को पैदा नहीं करते, तो स्वयं धर्म स्वरूप हो गए। धर्म की पूर्णता को वो पहुंचे, प्राप्त किया, लेकिन किसी एक को भी वो धर्म प्रकट नहीं कर देते। बस वो अपने आप में लीन रहते हैं, कुछ करते नहीं। देव शास्त्र, ये जो शास्त्र हैं, वो तो प्रत्यक्ष रूप से उद्गल परमाणु की रचना है, उससे भी, इसमें से भी धर्म नहीं आता। सर्वज्ञ भगवान में से भी मेरा धर्म नहीं आएगा, शास्त्र के पन्ने पोथी में से भी मेरा धर्म नहीं होगा, और श्री गुरु निर्ग्रंथ भाव लिंगे दिगंबर संत हो, वो भी धर्म को देते नहीं। देते क्या, कहने में जरूर आता है कि भगवान ने धर्म प्राप्त किया, गुरु ने धर्म दिया, ऐसा कहने में जरूर आता है। ये विनय की, विवेक की भाषा है, लेकिन कहीं बाहर से आत्मा का धर्म नहीं आता। वो आगे बोल दिया कि ऐसे निर्विकार दशा रूप जो धर्म है, उसका करने वाला स्वयं खुद ही है। वो अस्ति से बोला, नास्ति से कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु और ये मंदिर में जिन प्रतिमा जी जिसकी स्थापना करते हैं, यहाँ से हमारा धर्म नहीं आता। कहीं से भी बाहर से धर्म आता नहीं, क्योंकि अपनी धर्म की अवस्था अपनी आत्मा मां से, अपनी आत्मा में से प्रकट होती है, और अपनी अवस्था कहीं और जगह से आती नहीं, उत्पन्न होती नहीं। ऐसा क्यों कहा, ऐसा कहने की क्यों आवश्यकता है, और ऐसा कहने से कहीं देव शास्त्र गुरु और प्रतिमा जी का अभिनय नहीं हो जाएगा? विचारणीय प्रश्न कि देव शास्त्र गुरु और जिन प्रतिमा, ये राग के निमित्त है या वीतरागता के, पहला विचार करें कि किसके। जगत के सारे पदार्थ तो राग के निमित्त है ही, कोई प्रशस्त कोई अप्रशस्त, लेकिन ये वीतरागी देव गुरु शास्त्र है जिन प्रतिमा सत्पुरुष, ये कोई राग के निमित्त है? ये तो स्वयं कहते हैं कि देख भैया, तो हमारे डूबे हुए हैं, हमारा स्वरूप ही यही प्रसिद्ध रूप से बता रहा है कि अंतर्मुख हो जाओ, हम अंतर्मुख हैं, तुम भी अंतर्मुख हो जाओ। अगर इनके दर्शन से ऐसा बोध हुआ तो ये निमित्त है, जब तो ये निमित्त है। अगर ऐसा बोध हमने नहीं लिया और केवल शुभराग का निमित्त बनाया तो जैसे पंचेंद्रिय के विषय को राग का निमित्त बना दिया, उसको भी पक्षेन्द्रिय के विषय बना दिया, शास्त्र को कर्णेन्द्रिय का विषय बना दिया और प्रतिमा आदि भगवान आदि को और गुरु आदि को चक्षुन्द्रिय का विषय बना दिया। क्या फर्क रखा, विवेक किया या अविवेक किया? वो तो अविवेक हो गया। निमित्त तो दोनों हैं लेकिन एक सरिखे निमित्त नहीं। देव शास्त्र गुरु जिन प्रतिमा सत्पुरुष निमित्त जरूर है, अन्य ड्रव्य होने से उसको उपादान तो रह ही नहीं सकते, उपादान तो नहीं सकते है। लेकिन निमित्त है तो किस प्रकार के निमित्त है कि धर्म में वो निमित्त है, राग में नहीं, रंगीज नहीं, वो धर्म के निमित्त है। इसलिए यहां से धर्म की दशा कैसे प्राप्त होवे यही बोध लेना है। जब उसको निमित्त कह सकते हैं, केवल राग का निमित्त बनवा दिया, अविवेक कर दिया, विवेक भी नहीं रहा, जैसे पंचेंद्रिय का विषय वैसा वो भी एक इंद्रिय का विषय हो गया। इसलिए इस बात की चर्चा की है गुरुदेव ने कि लोग उसके प्रति राग करते हैं, देव शास्त्र गुरु जिन प्रतिमा आदि पर पदार्थ और निमित्त के प्रति राग के निमित्त बना करके मान लेते हैं कि हम धर्म करते हैं, कहते हैं कि ये बड़ी भूल है। कहीं से भी तो अपने दुकान पर आके व्यापार नहीं कर देता है, व्यापार कैसे करना बस यही बात है। प्रोफेसर को लौकिक शिक्षा देने वाला गुरु कहो, एक ही बात है। ऐसे गुरु बताता है कि धर्म कैसे होता है, कहाँ से होता है, आत्मा क्या चीज है, वो बताता है, बस अंगुली निर्देश करते हैं। वो स्वयं धर्म के रास्ते पर चलते हैं और रास्ते का अंगुली निर्देश भी करते हैं कि ऐसा रास्ता है, यही रास्ता है, तुम चलो, चलना खुद को है। इसलिए कहते हैं कि धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, किंतु निज शुद्ध ज्ञायक आत्मा का ही आश्रय से धर्म प्रकट होता है। धर्म जो प्रकट होता है वो अपना शुद्ध ज्ञायक आत्मा, धर्मी उसको कहते हैं जिसमें अनंत गुण धर्म है, उस आत्मा को धर्मी कहते हैं। धर्मी में से धर्म प्रकट होता है, धर्म प्राप्त किया उसको भी धर्मी कहते हैं और अनंत गुण धर्म है उसको भी धर्मी कहते हैं। धर्मी का दो अर्थ है, जिसमें अनंत गुण धर्म है वो धर्मी है, वो तो छह द्रव्यों पर लागू पड़ता है। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की निर्विकार शुद्ध दिशा है उसको प्राप्त करते हैं, उसको भी धर्मी कहने में आता है। तो जो अपने श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से शुद्ध ज्ञायक आत्मा में स्थिर रहते हैं, लगे रहते हैं, ऐसे परिणाम को धर्म कहते हैं। आत्मा ज्ञान और आनंद आदि निर्मल गुणों की शाश्वत खानी है। कैसा है अपने आत्मा? सुबह का आत्मा, सिर्फ भगवान का आत्मा, गुरु का आत्मा ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि तेरा आत्मा, इसमें अनंत ज्ञान है, केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, तेरे खजाने में, तेरे खानी में केवल ज्ञान भरा हुआ है, अनंत अनंत बेहद, जिसकी सीमा नहीं, हद नहीं, इतना आनंद भरा हुआ है। ऐसे ऐसे शुद्ध निर्मल गुणों की ये खानी है। जगत की खान हीरा माणिक सोने के हुए 100, 200, 500 साल में खत्म हुए, ये शाश्वत खान। तो उसका वपराश हो गया। आत्मा में केवल ज्ञान के सामर्थ्य है। सादी अनंत काल केवल ज्ञान का उसमें से उपयोग होता रहता है, फिर भी जो केवल ज्ञान का सामर्थ्य रूप शक्ति है, पावर है, वो उतना का उतना ही रहता है। यही कोई अचिंत्य आत्म स्वरूप की परिस्थिति है, ये अचिंत्य शक्ति की स्थिति है कि जिसका विचार कोई करने में विचार की सीमा होती है, शक्ति की सीमा नहीं है, विचार की मर्यादा में वो आती नहीं चीज, इसलिए उसको अचिंत्य कहते हैं। अनंत अनंत काल तक उसमें कोई फर्क नहीं होता कि नहीं फर्क होता। अनंत काल जीव निगोद में रहा और यही जीव अनंत काल सिद्धालय में सिद्ध अवस्था में रहेगा, बस दोनों युगों में कोई फर्क नहीं। अनंत काल पहले जो तो वैसा का वैसा, अनंत काल के बाद देखो तो वैसा का वैसा वैसा। ऐसी कोई शाश्वत वस्तु है वो अपनी आत्मा है। इतनी भारी चीज होते हुए भी इसकी मुख्यता नहीं आती है, और जो शाश्वत नहीं है ऐसे शरीर और दूसरे जो संयोग है इनकी मुख्यता रहती है, तो एक बहुत बड़ी भूल होती है अपने आप के विषय में। आत्मा ज्ञान और आनंद आदि निर्मल गुणों की शाश्वत खानी है। सत्समागम से सत्समागम में श्रवण मनन द्वारा उसकी यथार्थ पहचान करके आत्मा में से जो अतीन्द्रिय आनंद युक्त निर्मल अंश प्रकट हो उसी को धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा की है गुरुदेव ने। कैसे होती है जी आवश्यकता का सवाल नहीं है। जो मूल पदार्थ में शक्ति भरी है उसका स्वभाव ही इस रूप प्रकट होने का है। ठीक है, आवश्यकता अनावश्यकता का कोई प्रश्न ही नहीं। जो अपना स्वरूप है वो वैसा ही प्रकट हुए ऐसा ही इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव ही ऐसा है, प्रकट नहीं होता है तो उसका स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार नहीं है कि मैं ऐसा हूं, ऐसा श्रद्धान में स्वीकार नहीं है। मेरा सुख मेरे में है ऐसा स्वीकार कहाँ है? मेरा सुख मेरी तंदुरुस्ती में है, मेरा सुख मेरे साता के उदय में है, मेरा सुख मेरी अनुकूलताएं में है, बस यही जीवन हो गया। तो नहीं प्रकट होता है लेकिन वो खत्म नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, यही इनकी विशिष्टता है। शाश्वत है उनका अपनी खुद की पर्याय, स्वयं की पर्याय, अपने आप का स्वीकार नहीं करे, जैसा स्वरूप है वैसा का वैसा अगर स्वीकार नहीं करे, कहां तक? अनंत काल तक स्वीकार नहीं करे तो भी वस्तु का नाश नहीं होगा। मतलब ये स्वभाव को स्वीकार अस्वीकार की परवाह नहीं, दरकार नहीं, अपेक्षा नहीं। श्रद्धा मेरा स्वीकार करे तो ठीक, ये बात उसको नहीं है, ऐसा स्वभाव है। पहचान हो गए तो बहुत बड़ी बात है। जैसा स्वभाव है वैसा पहचान हो तो दृष्टि हो जाएगी। अनादि से जो दृष्टि मिथ्या उल्टी पड़ी है वो सलट जाए, पहचान हो तो सलटे, नहीं पहचान हो तो अनंत काल तक दुख ही दुख भोगता रहेगा। बस ये तो वस्तु का विज्ञान है, न किसी को दूसरे को कोई लेना है न कोई देना है। अपने स्वयं के स्वीकार में सुख की उत्पत्ति होगी और इसके अस्वीकार में दुख की उत्पत्ति होगी। संतों ने केवलियों ने ये बात बताई, अब तो जैसा जचे वैसा करो, जचे तो स्वीकार कर अपने स्वरूप का, हमारा स्वीकार कर। वो नहीं कहते देव गुरु शास्त्र, ये कभी नहीं कहते हैं कि तू हमारा स्वीकार कर, हमें जरूरत भी नहीं तेरी, तेरा स्वीकार के भी हमें कोई आवश्यकता नहीं, तेरा स्वरूप स्वीकार, ऐसा हम कहते हैं। तुझे जचे तो स्वीकार, नहीं जचे तो तुम नहीं स्वीकार, हमें कोई लेना देना है ही नहीं। ऐसी बात
है, हाँ।
द्रव्य गुण जिसको शुद्ध है, जिसको शुद्ध है कि मेरा द्रव्य गुण शुद्ध है, उसकी पर्याय में तो झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो उन लोगों की पर्याय में है कि जो द्रव्य गुण को शुद्ध नहीं स्वीकार करते, इनकी पर्याय में झगड़ा है। जिसको द्रव्य गुण, मेरा द्रव्य गुण शुद्ध है, ऐसा है, ये प्रश्न कहाँ से उठता है? आपको जो प्रश्न चला है वो कहाँ से उठा है कि द्रव्य गुण तो शुद्ध है लेकिन किसका, कि दूसरे का?
तो
हमारी आत्मा का जब शुद्ध है फिर वो झगड़ा नहीं है।
देखिए
एक दरिद्र आदमी को, आजीवन दरिद्र है, उसके घर में से निधान निकला। कहाँ से निकला? अपने झोपड़ी थी, दरिद्र था, उनकी झोपड़ी में से ही निधान निकला। फिर उसको कोई दरिद्रता का झगड़ा रहा क्या? अभी तो मालूम ही हुआ है, अभी ये खोदेगा निकालेगा, रात्रि को दिन को नहीं निकालेगा, सयाना है
रात्रि को निकालेगा,
दिन में निकाले तो कोई और झगड़ा डालते हैं कि ये झोपड़ी तेरी नहीं है, ये तो तेरा बाप ने हमको दी है, ये निदान हमारा निकाय है, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले आएगा रात्रि को निकालेगा। सिद्धांत ये है कि जिनको निदान मिलता है वो लोगों को कहते फिरते नहीं, और कहते फिरते रहेंगे तो लूटा जाएगा। दरिद्र बहुत हैं, लोग तो बहुत दरिद्री हैं, बहुत दरिद्र के बीच में एक धनवान हो तो क्या हालत हो जाए इसकी? वो तो कहेगा कि नहीं, साम्यवाद होना चाहिए, आप अकेले इस पूंजी को भोगे और हम सब भूखे रहें, आप तो मेवा मिठाई खाते रहें और हम भूखे रहें, ये बात कैसे बर्दाश्त होगी? क्या करेगा? साम्यवाद का प्रस्ताव आएगा, इसमें बांटो सबके सर के हो जाए, ये रात्रि को खोदेगा। लेकिन वो खोदेगा जब तो खोदेगा, मकान बनवाएगा तब तो बनेगा, कपड़े ले लेगा, सिलाएगा तब तो सिलेगा, जेवर गहना खरीदेगा तब तो होगा सब। लेकिन पर्याय में कोई झगड़ा रहा क्या इसके पहले? ये नहीं रहा। जिसको अपना निधान, अपना खजाना अपने कब्जे में देखा, उसको कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन देखा नहीं है और प्रश्न करे तो दूसरे की बात चलती है, अपने की तो नहीं चलती है इसमें। अपने को देखे तो कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा है तो अपना अनंत पूर्ण सुख अपने में भरा है, और कोई बाहर के पदार्थ की अवस्था सुख दुख देने वाली नहीं। बस इस हालत में क्या आपत्ति है? फिर कौन सी आपत्ति है? जब मेरा सुख मेरे में भरा है पूरा का पूरा, और बाहर की कोई चीज सुख दुख का कारण नहीं मेरे लिए, फिर क्या आपत्ति है? कौन सी चिंता, कौन सा विकल्प, कौन सा भय, क्या बात है? संभाल ही नहीं रहता है। पहचानने की, पहचान बड़ी बात है। सबसे कोई बड़ी बात है तो ये पहचान है। ये स्वाध्याय सत्शास्त्र उपदेश बोध पहचान कराने के लिए है, ये एक कारण है। लक्ष्य थवा ने तेह नो गया शास्त्र सुखदाय सिमृदाय। इसलिए सत्समागम में मैंने सत्समागम इसलिए, जिन्होंने ऐसा आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, ऐसे जो सत्पुरुष हो, इनके समागम से श्रवण करें, सुने, इस बात को समझें, मनन करें, भीतर में उसको अवलोकन करें, सुने ऐसा है कि नहीं है उसकी तलाश करें, खोज करें, अवलोकन करें, और इससे यथार्थ पहचान करने से ये पहचान होते ही आत्मा में से अतीन्द्रिय आनंद, लौकिक आनंद नहीं, इंद्रिय का आनंद नहीं, इंद्रिय विषयों का आनंद नहीं, अलौकिक अतीन्द्रिय अनिर्वचनीय आनंद मय निर्मल धर्म की दशा प्रकट होगी। यही धर्म है, कोई पुण्य पाप के परिणाम धर्म नहीं है। तो आगे कहा चुके हैं कि पूजा भक्ति शास्त्र स्वाध्याय दया ध्यान यात्रा नाम स्मरण कोई धर्म के परिणाम नहीं है।
जी जाएगी
लोगों की व्यवस्था उश्रृंखलता में जाएगी कि नहीं जाएगी, इसकी चिंता हमें करनी है या कुछ हमारा हित करना है हमें, पहली बात तो ये है। लोग तो वैसे ही उश्रृंखल ही है, क्या है? वितराग सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा की नहीं मानते, मानते हैं क्या? मानते तो संता संसार रहता नहीं, कितने तीर्थंकर हुए, ठीक है, तो फिर दूसरे की तो बिचारे क्या करना। और ये तो पहले तीर्थंकर इस चौबीस के हुए, ऐसी कितनी चौबीस हुई, अनंत चौबीस ही हो गई। फिर संसार तो वैसा का वैसा ही रहा, सुधरा या बिगड़ा? कि अभी तो हालत बिगड़ी हुई है, सुधरी हुई तो दिखने में नहीं आती, दिन प्रतिदिन और पंचम काल में बिगड़ती जा रही है। क्या 24 तीर्थंकरों का परिश्रम बेकार हो गया क्या? कि अपने आप में तो सार्थक हुआ, और जो भी भव्य लायक जीव थे वो भी सिद्धि में गए, इसकी इनके निमित्त से तो गए तो गए बस। बाकी संसार में तो अनंत अनंत जीव संसारी है, वो तो हमेशा के लिए यही चलता ही रहेगा। ऐसा केवल ज्ञान में ये देख लिया, दिव्य ध्वनि में ये प्रसिद्ध भी कर दिया कि ऐसा संसार अनंत काल चलने वाला है। कोई सभी जीव मोक्ष चले जाएं, धर्म प्राप्त कर ले, ये बात होने वाली नहीं, बनने वाली नहीं है। और सभी जीव स्वतंत्र हैं, कोई हमारे अधीन नहीं है। हम केवल सर्वज्ञ हुए इसलिए आप हमारे अधीन हो गए, ऐसी बात तो नहीं है, बस खत्म। इसलिए दूसरों की चिंता नहीं करनी है। तो हमारे स्वाध्याय के एक शिष्ट बताते हैं, जैसे शिष्ट होते हैं ना, हर जगह अपने अपनी शिष्ट होती है, कि जिन मंदिर में धूम्रपान नहीं किया जा सकता, धूम्रपान किया तो नहीं जा सकता, तो यहाँ धूम्रपान निषिद्ध है, लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये शिष्ट का विषय है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे शास्त्र स्वाध्याय का एक शिष्ट है कि दूसरे की हमें नहीं सोचना है, हमारी ही सोचने के लिए हम बैठे हैं। क्या हम शास्त्र स्वाध्याय हमारे आत्मा के लिए करने को बैठे हैं तो हमारी ही सोचे हमें क्या होगा? ऐसी बात सुनने से, विचार करने से, अंगीकार करने से हमें क्या होगा? नुकसान होगा या लाभ होगा, इसको हमें सोचना है। हमारी बात दूसरों की हमें सोचना ही नहीं है, ये आउट ऑफ डिसिप्लिन बात है। लेकिन उतनी बात नहीं है वहां, ऐसा परिणाम होते वक्त उसी का ही निषेध उनको वर्तता है, ये बात प्रमुख है, मुख्य है, और ये सभी जीव को ऐसा हो ये बात गौण है। आप गौण को तो मुख्य करके देखो और मुख्य को तो देखो ही नहीं, ये कहां का न्याय है? ये तो तीर्थंकर के प्रति अन्याय है, है? ऐसा तो अन्याय नहीं करना चाहिए। उनको जो निषेध वर्तता है ये तो प्रधान रूप से होता है, मुख्य रूप से होता है, और ये तो नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। गुरुदेव क्या कहते थे कि जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो भी क्या है, वो भी एक जहर है, विष है, विष बताया। राग तो विष है, जो आत्मा का धर्म होता है वो आनंद अमृत होता है, निर्मल आनंद की बात किया है, ये आनंद अमृत है, यही अजर अमर पद में ले जाने का एक भाव है, ये तो भाव मरण है। उसमें तो आत्मा का ज्ञान आनंद प्राण का घात होता है। ये गुरुदेव ने कहा ना, ये जिन शास्त्र में ये बात बहुत जगह पड़ी है, बहुत जगह पड़ी है। भगवान कुंदकुंद आचार्य ने पुण्य पाप का अधिकार लिखा समय सार में 108 कलश की टीका में, इसका रेफरेंस बार बार लेते हैं। मोक्ष हेतु तिरोधानाथ, ऐसा ही राग के परिणाम मोक्ष का हेतु को तिरोधान करता है, बंधत्वात् स्वयमेव च, स्वयमेव बंध का कारण होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्या, बंध का कारण हुआ है मोक्ष हेतु तिरोधायित भावत्वात्, मोक्ष का हेतु का आच्छादन करने, घात करने के कारण तत् निषिध्यते, उनका निषेध करने में आया है। ये तीर्थंकर भगवान ने उसका निषेध किया था। यहाँ कोई जानेगा राजमल जी इसकी टीका करने हैं, ये तो 200-250 वर्ष पहले की बात है। शुभ अशुभ क्रिया रूप जो आचरण रूप चारित्र है ये करने योग्य तो नहीं है, ठीक है, मोक्ष मार्ग में उसका निषेध किया है तो ठीक है, फिर भी वर्जन करने योग्य भी नहीं होगा क्योंकि मोक्ष मार्ग भी करते हैं, पूजा पूर्ति व्रत से पालते हैं। उत्तर ऐसा है, ऐसा प्रश्न उठाया है कि नहीं, वर्जन योग्य है क्योंकि व्यवहार चारित्र होता हुआ दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। तीन शब्द का प्रयोग किया है, ये पंचाध्यायी में इसका प्रयोग किया है, दुष्ट, अनिष्ट और घातक। घातक याद नहीं है, नोट किया है, दुष्ट अनिष्ट और घातक है, तो बात पंचाध्यायी का ने मूल श्लोक में लिखी है। सात सौ बात थे जल्दी मरे नहीं तो यहाँ कहते हैं कि इसकी पहचान होना यही आनंद उत्पन्न होने का एकमात्र कारण है और भाव मरण इससे मिटता है, द्रव्य मरण भी इससे मिटता है। आत्मा मूल स्वरूप से तो अजर अमर पद स्वरूप ही है, लेकिन अवस्था में मरण तुल्य दुख होने से उसको मरण कहते हैं। ये दुख मिट जाता है, उसको मरण मिट गया और अजर अमर हो गया, इसका कहना ऐसा कहने में आता है। अभी कोई दवाई बता दे मैं, एक टैबलेट खा जाओ मरोगे नहीं, लेकिन शर्त ये कि तुम्हारी पूरी पूंजी एक टैबलेट के अवेजी में देना पड़ेगा। ये देगा पूंजी, क्या बोलेंगे कर्जा करना है तो वो भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, कर्ज करके वो खरीद करेगा। और यहां संत धर्मात्मा मुफ्त में ये टैबलेट देते हैं, सरकार नहीं करता जी,
बोलते देते हैं इसकी है सरकार इसकी कीमत घटा दी रहा मुफ्त में देते हैं इसकी
अपनी सही बात है, ये बात सही है। जो चीज पूर्व पुण्य योग से वैसे ही सहज प्राप्त होती है उसकी कीमत नहीं होती है, ये बात सही है। मैं तो अन्य में से आया हूँ इसलिए ये बात कह सकता हूँ कि आपको ये शास्त्र के संप्रदाय में जितनी कीमत नहीं दिखती है इतनी भी कीमत तो, क्योंकि ये चीज सारी दुनिया ढूंढे तो नहीं मिले, खोज कर करके मर जावे तो नहीं मिले, और घर में पड़ी हो हाथ नहीं लगावे, तो बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा ही होता है कि पुण्य का उपभोग है वो इस तरह जीव करता है कि पुण्य की नोट को जला देता है, इसकी खाक हाथ में आती है हाथ में कुछ नहीं, यही बात हो जाती है। तो कहते हैं ना मुफ्त में कीमत घटा के किताब दाम देते हैं तो पैसा नहीं, उसकी कीमत नहीं रहती। अभी टेक्निकल बुक्स तो आती हैं फॉरेन में, जो जर्मन में अमेरिका में जो भी साइंस की जो टेक्निकल बुक है, ये भी साइंस है आत्मा का विज्ञान, तो इतने एक वॉल्यूम लगाओ कम से कम 200-400 रुपया लग जा रहे हैं एक किताब का। इससे फायदा हुए नहीं हुए दूसरी बात है, यहाँ तो इसका अध्ययन करे फायदा होवे ही होवे, यही बात है। समय पर लक्ष्य इस वक्त ऐसा विचार किया कि लोगों को क्या होगा, जैसे आपका प्रश्न उठाया है यही बात है कि इसके लोग पर क्या असर पड़ेगी। अध्ययन करते यही दूसरे का ध्यान रखा है, यही कारण है ऐसा। जो अनंत महिमावंत अपना स्वरूप है उसकी महिमा किया नहीं, उसकी महिमा देखी नहीं, उसकी महिमा पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, अंतरंग में उसकी महिमा आई नहीं, यही बात हुआ है, यही कारण है। परलक्षी ज्ञान 11-9 पूर्व का व्यर्थ जाता है और प्राय अवगुण का उत्पादक होता है, गुण का नहीं अवगुण का उत्पादक होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि पर्याय बुद्धि होने से ऐसा तगड़ा क्षोभ हो जाने से उसमें अहम बुद्धि और संतुष्टपना आए बिना रहेगा नहीं, दर्शन मोह तीव्र हो जाएगा, मिथ्या तीव्र हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पहचान करके आत्मा में से जो अतीन्द्रिय आनंद युक्त निर्मल अंश प्रकट होवे अवस्था का, ये जघन्य अंश होते हुए भी मोक्ष मार्ग का और मोक्ष का ये मूल सत्व है, इसलिए उसकी शास्त्र में और भगवान की वाणी में शुरुआत होने पर भी उसकी बहुत महिमा गाई है। यही कारण है कि इसमें सत्व बहुत बड़ा पड़ा है, इसको धर्म कहते हैं।
श्रीमद भगवान।